नवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण 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 नारायण।
हमारे सामने एक प्रश्न आया है, अभी राजनीति में धर्म को साथ लेना चाहिए कि नहीं। उसमें ऐसा विचार है कि धर्म को लेकर बहुत कुछ हलचल हो रही है, इस वास्ते धर्म को निकाल दिया जाए तो राजनीति बड़ी अच्छी हो जाएगी। धर्म को लेकर पक्षपात होता है, इस वास्ते धर्म को छोड़ दिया जाए तो बड़ी राजनीति ठीक हो जाएगी। ऐसी संभावना है जिससे ऐसा प्रस्ताव रखा, ऐसी बात आई है। इस पर विचार करना है कि धर्म रहित आप विचार करो, पक्षु पक्षी भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, मनुष्य तो खास मनुष्य बना है। आहार निद्रा भयमेधन सामान्य मेदत प्रसुवीर नारायण धर्मारितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समान। धर्महीन होगा पशु के समान होगा, पशुओं के भी धर्म है, पशु धर्म है उनका, उनमें भी धर्म है, उनमें भी मर्यादा है। और पशु मनुष्य भी धर्म रहित हो जाएगा तो क्या दशा होगी? मनुष्य खास करके और धर्म पालन करने वाला है, धर्मेण नहीं ना पशु भी समाना, कुत्तों की तरह, गधों की तरह, पशुओं की तरह, सुअर की तरह, ऊंटों की तरह हो जाएगा लोग। गधा भेजो सुअर भेजो, उनमें धर्म है तो अपने अपने प्रयासा है। उनमें जो जानकारी कितनी है, अब ध्यान देना थोड़ा, जानकारी पशुओं में ये खाद्य है ये अखाद्य है इतनी है, और जानकारी नहीं है तो उस जानकारी के अभी भी आदर करते हैं। ऊंट कितना ही भूखा हो आप खाएगा नहीं, बकरी कितनी भूखे हो ढाक खाएगी नहीं। उनमें ऐसा है ये करना है ये न करना है, ये कर्तव्य और अकर्तव्य बताने वाला धर्म ही है, राजनीति नहीं है। धर्म की जहाँ न्यूनता आ जाए, कमी आ जाए, तो राजा शासन के द्वारा उस धर्म को रक्षा करे। राजा वो केवल बार बार की विचार करने वाला राजा है, धर्म की रक्षा करने वाला राजा नहीं है। अगर धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो राजा क्या होगा? मनो धर्म का पालन करना न पालन करना, इस विषय में राज का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए किंचित मात्र, परंतु धर्म का राज्य राज पर प्रजा पर सब पर होना चाहिए। धर्म भीतर के भावों को ठीक करता है, राज्य बाहर के भावों को ठीक करता है। तो बाहर है चोर है लुटेरे हैं डाकू है अन्यायी है अत्याचारी है दुराचारी है, उनको हटाकर प्रजा की रक्षा करे। और धर्म के हीन हो जाए रक्षा कौन करेगा? यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी। अभी विचार कर देखें तो आप क्षमा करें, बुरा न माने। अभी जो ज्यादा टैक्स बढ़ाकर किया है उससे कितना अधर्म पैदा हुआ, कितना पाप पैदा हुआ, कितना अन्याय पैदा हुआ, कितना झूठ कपट बेईमानी लोगों में आई है टैक्स बढ़ाने से। वे तो समझ लेंगे टैक्स बढ़ाकर हम अधिक रुपया लेंगे, टैक्स अधिक रुपया तो राज्य में तो जाएगा नहीं, झूठ कपट बेईमानी ये संसार में बढ़ जाएगी। अरे बढ़ गई, मेरे देखते देखते संसार में इतना अन्याय हो गया है, इतनी झूठ कपट बेईमानी आ गई है, जो कोई कहने का क्या विचार, आश्चर्य जैसी बात है। ये लोभ में आकर देखो, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशं आत्मनः, अपना पतन करने वाले तीन लड़कों के दरवाजे है। तो ये लोभ को आकर के ये कानून बनता है, तो लोभ के बीच में नरकों का दरवाजा है तो प्रजा सब नष्ट हो जाएगी। अब आज कोई बात करे तो ये काम कर लो कि अपने दूसरों को मालूम मत दो, रुपया कितना ही खा लो और को मालूम मत दे दो, छिपे छिपे खा लो। ये कब होता है कि जब धर्म नहीं होता तब होता है, वहां शासन कौन करेगा। झूठ कपट बेईमानी करनी, ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करने में मना कौन करेगा। तो ये मना करता है धर्म। अरे धर्म पालन करने वाले राजा लोग होंगे, राजनीति क्यों होंगे, वे धर्म का नाम लेने पर वो कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि धर्म है उसके बीच में। तो धर्म के बिना उसे कौन होगा, धर्म रही तो होंगे। अब धर्म रही तो होंगे वे धर्म का पालन करेंगे, क्या धर्म की रक्षा करेंगे, क्या प्रजा से धर्म पालन करवाएंगे। स्वयं धर्म रही थे कैसे करेगा, वेश्या पतिव्रत का उपदेश दे गई कि पतिव्रता तुम बनो, व्यभिचारी है ब्रह्मचर्य का उपदेश देगा, दुराचारी तो नहीं छिप कर करेगा तो भी दुराचार फैलेगा, दुराचार की पाठशाला नहीं है, पाप अन्याय की पाठशाला नहीं है, झूठ कपट बेईमानी की पाठशाला नहीं है, अच्छे बातें की पाठशाला है। परंतु वे जो करते हैं झूठ कपट, जो करने से असर पड़ता है वो उस व्याख्यान से असर नहीं पड़ता है। भगवद गीता में यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोक संग्रह की बात आई गीता में, भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें लोक संग्रह के लिए भी अब देखता हुआ भी अपने धर्म के ऊपर कायम रहो। तो धर्म है ये लोक संग्रह करने के लिए है, लोक संग्रह मतलब लोगों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग लाने के लिए किया जाए उसको कहते हैं लोक संग्रह, लोगों का संग्रह। लोक लोक शब्द है, वो लोक अपने लोक तो स्वर्लोक है मतलब ये जो स्वर्ग है, पर्थ है, पाताल है, ये भूलोक भोरलोक महरलोक जनलोक सबलोक तपलोक सत्यलोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये लोक है, 14 भुवन है, इनको लोक कहते हैं। तो लोगों की रक्षा किससे होती है, लोगों से होती है। आप हम लोग लोग हैं, लोग ये लोक है, तो लोक संग्रह होगा तो लोक संग्रह से लोक संग्रह होगा। मानो लोग अपनी मर्यादा में चलेंगे तब इन लोगों की मर्यादा ठीक होगी, और लोग ही जब अपने मर्यादा का त्याग कर देंगे तो लोक भ्रष्ट हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। आपके किसके विरुद्ध पड़े उसमें मैं माफी मांग लेता हूँ, मेरे को पूछा है तो बस मैंने कहना पड़ता है। ये जो आज बात है कि सबके साथ खाओ पियो, ये सब काम करना कि सबको अधिकार और सबके साथ खाओ, वो कोई भोजन आदि का कोई परहेज मत रखो, क्या दशा होगी इसमें, आज सोचते नहीं है। जूठन खा रहे हैं, एक एक जूठन खा रहे हैं कि ये मिटाओ, छुआछूत मिटाने के लिए लिफाफा छपा आता था कि ये छुआछूत मिटाओ, अब रोग आया भयंकर सुअर सू से फैलने वाला, तो लिखा हुआ बंद हो गया, ये आप नहीं जानते हैं क्या? मैंने देखा है खुद ने, आजकल वो नहीं सबता है सुअर छोड़ छोड़ो, ये डंडा पड़ेगा तब ये मार मानेंगे, जब तक इनके ऊपर शासन लगना नहीं पड़ेगा तब नहीं मानेंगे, और ये धर्म को छोड़ चलेंगे इनका नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म रक्षा करेगा, धर्म रक्षा नहीं करेगा तो उसे धर्म नाश कर देगा। रावण पढ़ा हुआ कम नहीं था, बड़ा भाई रावण पढ़ा हुआ था, तो क्या कमी थी? धर्म के पालने की कमी थी, राज्य के वैभव कमी नहीं थी, नीति की कम नहीं था, अस्त्र शस्त्र बल कम नहीं था, था और मन होता था, कहां से होता था? सभी यंत्रों से होता था, अपने दरवाजों की तरह नहीं था लंका का, अरे समुद्र की खाई थी, वो बार करके त्रिकुट तो पर्वत था, किला इतना था, सब बाहर के बीच वो बहुत बढ़िया थी, मत कमी क्या थी? धर्म की थी, धर्म पालन नहीं करता था, राजा था वो। अब राजा हो धर्म रही थी होना चाहिए राजा, तो राजा धर्म रही था तो प्रजा कैसी होगी? तमाशा देखो आप, तमाशा कितना विद्वान था। गीता के ऊपर आप याद कर लो, कोई लिखना हो तो मैं लिख लो, गीता के ऊपर परमार्थ प्रभा एक संस्कृति का है, परमार्थ प्रभा नाम है उसका, उसमें श्रुतियां दी है वेदों ने, उस श्रुतियों के ऊपर रावण भाष्य लिखा है। रावण का भाष्य पुस्तक मैंने नहीं देखी है, परंतु परमार्थ प्रभा में श्रुतियों का उद्धरण दिया है, उन श्रुतियों के नीचे रावण भाष्य लिखा है संस्कृत का। वेदों पर भाष्य लिखने वाला था रावण, इतना योग्य था और बड़ा भारी नीति कुशल था, बहुत होशियार था, बड़ा बलवान था और बड़ा भारी संग्रह था उसके पास में, और बलवानों की कितनी फौज थी उनके पास में, एक एक राक्षस त्रिलोक की विजय कर लेते जैसे राक्षस थे, सब वचन थी पर धर्म नहीं था। धर्म का त्याग करते ही उसका नाश हो गएगा, वो धर्म खुद उसका नाश कर देगा, और धर्म नष्ट नहीं होगा, धर्म अटल रहेगा, धर्म आदमी में नहीं रहेगा। जैसे चौथे अध्याय में रामायण गीता जी में आया है, इमं विवश्वते योगम प्रोक्तवान अहम् योग विवश्वते प्रोक्तम योगवान प्रोक्तवान अहम् विवश्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त विमम राजर्षयो अभिदुः। राजर्षि जानते थे, आपको आश्चर्य अश्वपति या राजा हुए हैं, तो उपनिषदों में आता है कई कुलपति ब्राह्मण एकत्र होकर राजा के पास गए हैं, विष्णु अश्वपति के पास, उन्होंने जाकर ब्रह्म विद्या पूछी है, तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्म विद्या कैसे दे सकता हूं, मैं राजा हूं आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पूज्य होते हैं, मैं आपको कैसे उपदेश दूं, मैं आपको शिक्षा नहीं गुरु नहीं बन सकता, मैं कहता हमें तो ब्रह्म विद्या लेके मैं दक्षिणा दे सकता हूं, राजा हूं दक्षिणा ब्राह्मण को दे, मेरा काम है दक्षिणा दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा हमें तो ब्रह्म विद्या से मतलब है, आपसे ना ऊषा दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो ले लेंगे। तो उन कुलपतियों को ब्रह्म ज्ञानी बनाकर भेजा है, उन्होंने पूछा तुम क्या क्या उपासना करते हो, हम ये उपासना करते हैं ऐसी उपासना करते हैं, तो वहां कहा कि ऐसा करोगे तो सिर उठ जाएगा आपका, इसमें नष्ट हो जाओगे, इस वक्त इसमें ये सुधार करो ये सुधार करो ये सुधार करो। ये राजा जानते थे तब कहा ऋषियों को भी, राजा नहीं जानता तो क्या कहता, क्या बताते बताओ। एवं परंपरा प्राप्त विमम राजर्षय अभिदु, वे राजा कितने बड़े ऊंचे राजा लोग थे, उन राजा का लोहा चलता था स्वर्ग लोक तक। दशरथ जी महाराज ने इंद्र की सहायता के लिए युद्ध किया था। उस युद्ध में ध्वज टूटने पर केकई ने रक्षा की थी। उस केकई के रक्षा करने से महाराज दशरथ की विजय हुई। उस पर भी तुम वरदान मांगो, तब गए मैं वरदान बाकी रखती हूँ, थाती रखती हूँ, फिर मांगूंगी। वे वरदान दो मांगे थे वे। तो राजा स्वर्ग में जाकर रक्षा करता था। ये राजा होते थे ऐसे? तो राजाओं में तो खास चीज है, राजा धर्मस्थ धारक, राजा धर्म का धारक होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, धर्म पालन करवाता है दुनिया से। अरे वो धर्म रहित हो जाएगा, दशा क्या होगी दुनिया की? कौन शासन करेगा? ये भीतर शासन होता है, राजा का शासन बाहर होता है। मेरे मन में कई बात आई है, क्या कहूँ, दुख होता है, रोता है मेरा हृदय। तुम ऐसा करो, इस हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। ये धर्म में दखल देना महान पाप है राजा का। हमारे मर्यादा है उसमें, हम स्वास्थ्य करें, तुम्हें क्या मतलब इसमें? तुम रक्षा करो, हम उद्दंड हो जाए, अधर्म करें, मर्यादा का त्याग करें, तो आप शासन करो हमारे पर। धार्मिक बात बताने का तुम्हारे को अधिकार नहीं है। महाराजा दशरथ जी के कोई विचार होता तो वशिष्ठ जी को पूछते थे। वशिष्ठ जी के पूछने के बाद केकई को मालूम हुआ, ये बात मालूम ही नहीं हुई किसी को ही। पहले पास धर्माचार्य से पूछा है, सबके धर्माचार्य रहते थे, गुरु रहते थे, राजा शासन करते थे, पर राजाओं के ऊपर शासन ऋषियों का चलता था। धर्मात्मा महात्मा तत्व के जीवन मुक्त पुरुष थे, उनका शासन चलता था राजाओं के ऊपर, राजाओं का शासन चलता प्रजा पर। तो वो धर्म रहित हो जाएगा राजा, तो राजा मानेगा ही नहीं, तो क्या उच्छृंखल होगा? अरे जिसके पास संपत्ति है उसके ऊपर शासन न रहे तो संपत्ति क्या दशा होगी? जिसके पास बहुत धन है मैं पागल हो जाए तो वो धन क्या काम आवेगा? मर्यादा रहित होते हो ये दशा क्या होगी? जब राजा ही धर्म रहित हो जाएगा तो दशा क्या होगी? ये करके देखो, अभी हुआ है जिसमें तो आप देखते ही हो, परंतु इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कांग्रेस से भी कि आप जीना चाहते हो कुछ दिन, तो धर्म के पीछे मत पड़ो, धर्म का नाश करो, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। प्रार्थना करता हूँ मैं, ऐसे उच्छृंखल मत हो। अब विधान बना दर्शा कि धर्म रहित होगा राज्य हमारा, धर्म रहित होगा। तो राजा की आज्ञा कौन मनाता है? धर्म मनाता है। धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा मानो, धर्म कहता है बाप की आज्ञा मानो, धर्म कहता है माँ की आज्ञा मानो, धर्म कहता है गुरु की आज्ञा मानो, धर्म कहता है नौकर को कि तुम मालिक के कहना मानो, और इसे कहना नहीं माने तो पाप करते हुए डरते हैं धर्म के कारण से। आप मर्यादा में चलते हैं धर्म के कारण से। धर्मो ही एक है विशेष, धर्मेण ही न पशु से पशु के समान हो जाएगा, पशु से गिर जाएगा पशु के समान। कहना तो उनको चेताने के लिए है, मैं पशु के समान नहीं आगे, पशु से बहुत नीचे हो जाएंगे। आज ये जो परिवार नियोजन हुआ है, इसके द्वारा कितने चरित्र भ्रष्ट हो गया है दुनिया। अब परवाह ही नहीं है किस बात की, कितना आचरण भ्रष्ट हुआ है। और ये कानून जो लाए द्रव्य के लिए, पैसे के लोभ के कारण से कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था, मेरे देखने की बात है। पुरानी बात तो बहुत विचित्र आती है, मेरे देखने की बात है। अभी कहते हैं खेती में भी जानवरों को मारो जिससे खेत ठीक हो जाएगा। जब तक नहीं मारते थे तब तक खेत में जितनी अनाज होता था उतना नहीं होता है। 10-12 शेर 13 शेर की गेहूं की भाव थी, गेहूं गेहूं थे, मेरे खुद के देखे हुए हैं। 13-14 नर शेर का घी मिलता था, ये मेरे देखे हुए बात है। पहले 5-5 शेर रुपया का घी मिलता था, और 12-13-14 ऐसा हाँ मेरे साथ चलता था। मेरे बचपन की बात मेरे को याद है, अच्छी तरह बच्चा नहीं था उस समय में। आज घर घी क्या भाव है, गाय का घी मिलता नहीं है। और अनाज इतना होता था जो बहुत जिसमें खाड़ा में रखते, खाड़ा खोद करके उसमें रखते थे, और खाड़े की बाजरी मैंने खाई है, मैंने देखा है, वो काली पड़ जाती थी, स्वाद बचा नहीं रहता था, जमीन है वो स्वाद खींचती है तो उतना बढ़िया स्वाद नहीं रहता था। खोड़े की बाजरी है ये, रखे कहा, बर्तन नहीं था, उसके बनाए हुए कोठार, मैं आपको बताऊ खड़ापे में कोठार कई बने हुए हैं, मैंने उनको पूछा ये क्या है, ये कोठार थे, वे कमरा बनाया हुआ आदमी रहते हैं, भरे हुए कोठार रहते थे पहले, ऐसे दादे पर से बंद करके ऊपर से डालते थे, मैंने सबको बताया देखो ये ऊपर क्यों लिखा है, ऊपर से घर में भर जाए तो दरवाजे में तुम आएगा नहीं, दरवाजा कर दे बंद तो ऊपर से भरेंगे, इस तरह के कोठार है आजकल मकान है बने हुए, मैं क्यों को बताया, आपने देखा होगा खालने के, मैंने बताया है ये जो कोठार बना हुआ चाकू राम द्वारे में कोठार है, देख पीछे वो कोठार ऊपर से पहले कुआड़ भरा जाता है, वो साइना रखा हुआ है ऊपर से भरते हैं, वो लाखों मनवे में भर जाए जितना कोठार बना हुआ है, पहले के मकान बने हुए उनमें कोठार बना हुआ रहता था, बीकानेर में बने हुए जितने मंदिर बनता था, कोई भी हवेली बनाता तो उस भगवान का मंदिर बनता ही, आजकल उन मंदिरों में रसोई बन रही है, बीकानेर के भाई निगाह करो सत्य है झूठी बात ये, हर एक मंदिर बनता था जो मंदिर बनता था, आज उस मंदिर में रसोई बनती है, मैंने देखा है पुरानी जगह, मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी के मैं इतनी पता थी, अब वो धर्म बिठाए दो तो दशा क्या होगी, आज घूसखोरी करो जो किसी को मालूम नहीं हो जाए ले लो, तो किसी को मालूम नहीं हो जाए तो जनता से डरता है, अब धर्म से नहीं डरता है, क्यों धर्म है ही नहीं, भीतर डरे किस बात से, धर्म का पालन ही नहीं है, भैंस है वो अपनी बेटी दी है, अपनी बेटी दी है उस सगे को खेत है, भैंस जानेगी कि मारे अरे मालिक की लड़की दी है उसका खेत मैं कैसे खाऊं, भैंस क्या जाने खेत सगा को, सगे को खेत जाने कि भैंस, पर तो आदमी पानी नहीं पीते कि भाई इस घर में हमने कन्या दी है तो कैसे पीवे, आपने अयोध्या देखा होगा, गए होंगे, अयोध्या में एक मणि पर्वत है, मोहल्ला उसका नाम ही मणि पर्वत नाम है, पास में थोड़ी जमीन है, तो मणि पर्वत कैसे बना, महाराजा जनक ने विचार किया कि मैं मेरी पुत्री सीता से मिलने के जाऊं तो कहां ठहरूं, तो वहां अयोध्यानाथ से कहा कि आप कृपा करो हमें थोड़ी जमीन दे दो, हम मूल्य दे दें हमारी जमीन हो जाए, उस जमीन में हम जाकर के ठहरे तो हमारी पुत्री से हमें मिल रहे अच्छी तरह से। तो दशरथ जी के महाराज विचार में पड़ गए कि बड़ी मुश्किल हुए क्या करें, वो इनके ना भी कैसे कहें हाँ भी कैसे कहें, आप आओ यहाँ रहो, कि नहीं हमारे को मूल्य मूल्य मिल जानी चाहिए जमीन, हम आपकी जमीन में कैसे ठहरे, हमने कन्या दी है तो हमारी बेटी की जमीन में हम कैसे ठहरे, ये थी पंचायत थी। तो के कही है ना, ये एक मिनिस्टर थी, ये मामूली नहीं थी, के कही इस बार के कही से पूछा कि के कही अब क्या करें, दशरथ जी महाराज ने तो केकई ने कहा एक बड़ा मोती लाया, बहुत बड़ा कीमती हीरा, वो हीरा बड़ा मोती है, बड़ा मोती ऐसे वो सुनी है, वो लाए मणि, मणि थी मणि, वो कि ऐसी मणि है तो अपने महाराज जनक के यहाँ पर भेजो, ऐसी मणि आप दे दो, 100 मणि दे दो तो आपको जमीन दे देंगे। वो मणि भेजी तो केकई ने कहा कि ऐसी मणि ना तो मिलेगी यार ना वो खरीदेंगे यार ना जमारी बिक्रेगी, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो वहां गए तो राजा देखा भाई ऐसी मणि तो मेरे राज्य में है ही नहीं, ऐसी मणि कहाँ से लावे, बड़े विचार में पड़े। उस समय में सीता जी अपने पीहर में गई हुई थी, तो राजा जी को उदास देखा तो पूछा पिताजी आप उदास क्यों है, खिद बेटा क्या उदास करें, हमारा विचार था जब तेरे से मिलने के मन में आ जाए तो हम चले जावे अयोध्या, यार वहां ठहर जावे तेरे से मिल ले। तो मैं देखा भाई हमारे जमीन खरीद ले अपने, तो अपनी जमीन में हम बैठ सकते हैं, नहीं तो बेटी के जमीन जमीन में कैसे रहे। तो उसमें एक आई है कि ये देखो मणि है, ये ऐसी मणि 100 मणि लाओ तो आपको हम जमीन देंगे। अब हम बेटा कहाँ से लाए, उदासीन ये हो गए, अरे मणि दिए बिना जमीन मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो तुम्हारे से मिलने में जा सकेंगे नहीं, रह सकेंगे नहीं, बेटी के गांव में बेटी की जमीन में हम कैसे रहे, हमने कन्या दी है। तो कहा पिताजी इसकी क्या चिंता है, अपने यहाँ मणिया है ऐसी अमुक जगह मणि बहुत है अपने खेलो। वहां से देखा तो मणिया बहुत निकल गई, खोदा तो बहुत मणि निकली। तो फिर गाड़ा भर भर करके मणिया भेजी, गिनती ही नहीं, गाड़ा गाड़ा लाद लाद करके। तो मणि लेकर वहां ने कैसा इतनी मणि है अब जमीन देनी है, तो क्या ठीक है मणिया दे दी वे मणि फिर वही रख दी। दशरथ जी महाराज ने कहा कि हम बेचना चाहते नहीं तो मणि हम ले कैसे, तो वो मणि पर वो रख दी वही वही मणि रख दी। वो मणि पर्वत है, वो नाम मणि पर्वत है आज भी। तो वहाँ काफी दूर तक वो मणि पर्वत मोहल्ला कहलाता है। तो उसमें जितने बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, मैं गया हूँ देखा हूँ, मणि पर्वत पर चढ़ा हूँ, सब निगाह की है मैंने। आप अयोध्या गए हो जो सब जानते ही होंगे, सीधी बात है। जब श्रावण होता है तो श्रावण में पिता अपनी कन्या को बुलाता है, भाई अपनी बहन को बुलाता है, पिता नहीं रहे तो भाई बुलाता बहन को, क्या बहन श्रावण आई है, श्रावणी तीज है, कन्याओं का बड़ा उत्साह होता है श्रावणी तीज का, श्रावण की बड़े तीज से है लिया रुकमण का नावन चाली, ऐसे पद आते हैं बहुत से। तो अब जो श्रावण का महीना आता है तो जितने मंदिरों में सीता जी है वे सबके सब सीता जी वहाँ मणि पर्वत जाती है, और उनके पास में मोहल्ला बड़े बड़े वृक्ष है, उनके लिए झूला होता है, और उस झूला में वे झूलती है, वे समझते हम पीर आ गई, हमारा पीर है। तो हमारे जनक जी महाराज का जमा जमीन है स्थान है, इस वास्ते हम पीहर आई है। तो अभी श्रावण के महीने जितने मंदिर है उन मंदिरों के सब सीता जी वहां जाती है और झूला झूलती है, और अपना श्राम जी हमारा पीहर है, क्योंकि जनक जी महाराज की चीज है। अब जनक जी महाराज की चीज है, ये धर्म के बिना कैसा होगा आप बताओ, कौन कह सकता है ऐसा कि वो जमीन किसकी है, चाहे बेटी के ससुराल नहीं रहना है, जानकी जी का कुआ है वहां, जानकी जी का कुआ हो तो उसका तो पी सकते हैं महाराज, जनक जी महाराज का बढ़ाया हुआ तो जानकी नाम है। इतना बात है, धर्म की बात राजाओं में खास मुख्य थी, राजाओं में ही धर्म नहीं होगा तो धर्म का पालन कौन करेगा और कौन करवाएगा, होगा कैसे। तो धर्म की बात खास अगड़ी पहली रहनी चाहिए, इसके बाद राजनीति है। धर्म शासन करता है हृदय के ऊपर, और राज शासन करता है शरीरों पर, जमीन पर, मकान पर, इन पर राज का शासन होता है। भीतर शासन राज का नहीं चलता है, भीतर का चलता है चोरों पर, डाकुओं पर, वे डरते हैं राज से, परंतु जनता डरती है धर्म से। ये पाप का काम हम कैसे करें, ये सब जगह आपको रक्षा करता है। अगर धर्म नहीं है तो झूठ गबर से करोड़ों रुपया लाखों रुपया खा जाओ, कौन मना करता है, कि मालूम नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। अब लोगों को मालूम नहीं पड़े बस ठीक है, परंतु उगरे ही अंदर हो निबाहू काल नेमिच रावण राहु, कितने छिप करके गए हो, काल नेमिच छिपा नहीं, रावण छिपा नहीं, चोरी कितनी कर ली, राहु कितने छिप गया, देवताओं में क्या फंस गया, बचोगे नहीं, परंतु मन वजह हम बोले राजी हो जाए। भाई हमारे बहुत से, उनको मैं कहता हूँ आप पाप करते हो, अन्याय करते हो, और अन्याय करके धन कमाते हो, धन को तिरोजियों में जमा होगा, बैंकों में जमा होगा, और पाप होगा अंतकरण में जमा, मरोगे तो पाप एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं, सब साथ चलेगा, और धन एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं, वहाँ रक्षा कौन करेगा। यहाँ तो घूसखोरी से काम चलाओगे, वहाँ घूसखोरी नहीं चलती है, वहाँ डंडा पड़ेगा अच्छी तरह से पड़ेगा, नाम दूतों से तो धरेंगे मार दूतों से, ऐसी दशा होगी। इस वास्ते धर्म का पालन करना सबके लिए उपयोगी है और सबसे ज्यादा राजा को उपयोगी है। राजा ही राजा धर्म से वो अगर नहीं पालन करेगा तो कौन करेगा। मैं कह रहा था यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्वेतरो जना, तो हमारे श्रेष्ठ राजा माने जाते हैं और संत महात्मा माने जाते हैं, ऋषि महर्षि ये मुख्य माने जाते हैं। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ आचरण करेगा वो ही दूसरी दुनिया करेगी। तो दो दुनिया शासन में दो बात बताई लोक संग्रह के लिए 20वें श्लोक में तीसरे अध्याय में और 21वें श्लोक में यद्यदाचरति ये है और 22, 23, 24 में भगवान ने अपनी बात बताई है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21वां यत यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है इतने जना दूसरे पुरुष तत् तत् एव वैसा वैसा ही दूसरे आचरण करते हैं। तो यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव 5 शब्द आए हैं, यत यत तत् तत् एव और स यत प्रमाणं कुरुते, वो जिसको आज्ञा देते प्रमाण करते, यत तत् यहां 2 शब्द आए हैं। तात्पर्य समझो, मनुष्य के आचरण का जितना असर पड़ता है उतना वचन का असर नहीं पड़ता और वचन का असर भी उसके वचन का पड़ता है जो स्वयं अनुष्ठान करता है, धर्मात्मा है। मनुष्य के आचरण का जितना असर पड़ता है उतना वचन का असर नहीं पड़ता और वचन का असर भी उसके वचन का पड़ता है जो स्वयं अनुष्ठान करता है, धर्मात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, सदाचारी है, ब्रह्मचारी है, श्रेष्ठ पुरुष है, वास्तव में धर्मात्मा और पुण्यात्मा और तत्वज्ञ और जीवन मुक्त भगवत प्रेमी, ऐसा जो पुरुष है उसकी वाणी में जो ताकत है वो इनसे रहित विद्वान रावण जैसा और रावण से तेज हो उसकी वाणी में तेज नहीं है। ये तेज पैदा होता है भीतर के धर्म से, उसका शासन होता है सबके हृदय पर। तो अनुभवी पुरुष कहते हैं तो लोगों के हृदय पर असर पड़ता है भीतर में, क्योंकि भीतर से वह ठोस है। तो उसकी बात बताई जो आचरण करता है एक बार वो कहता है दो बात, दुनिया के आचरण ठीक करने के लिए स्वयं आचरण अच्छा करे और दुनिया को ठीक करने के लिए वचन से कहे। तो ये दो बात क्यों कही, आचरण की मुख्य हो तो देर कहने वचन की जरूरत नहीं और वचन की ही जरूरत है तो आचरण की जरूरत नहीं। दो बात क्यों कही, आचरण में जिस वर्ण में जिस आश्रम में हो पुरुष, उस पुरुष का आचरण वो आचरण करके बता सकता है। मगर ब्राह्मण है वो हिजन का आचरण कैसे बताएगा, वैश्य का आचरण कैसे बताएगा। आचरण तो वो करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित, पर जबान से तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हरिजन सबको ठीक बता सकता है कि नहीं। मानो आचरण करके सब बातें नहीं बता सकता, जिस आश्रम में है तो आचरण वो साधु है तो साधु का आचरण कर सकता है, गृहस्थ का आचरण कैसे करेगा, ब्रह्मचारी का आचरण कैसे करेगा, वानप्रस्थ का आचरण कैसे करेगा। वाणी में वो साधु का भी बता सकेगा और वानप्रस्थ का भी बता सकेगा, गृहस्थ का भी बता सकेगा और ब्रह्मचारी का भी आचरण बताएगा, स्त्रियों का आचरण बताएगा, पुरुषों का आचरण बताएगा। तो कहने वाली बात है और कहने में केवल कहता है, आचरण स्वयं नहीं करता तो बंदूक होती है एक बारूद भरा हुआ होता है, एक उसमें शीशा भरा हुआ था गोली, तो दोनों छूटे तो शब्द तो दोनों का होता है परंतु चोट लगती है गोली होती है उसकी, अरे गोली नहीं है केवल भड़ाक हो जाएगा चोट नहीं लगेगी। तो आचरण है मनुष्य का वो है गोली और वचन है वो है बंदूक का छूटना बारूद। तो दोनों की जरूरत है, दोनों में आवश्यक गोली है उसको मार करेगी वो, अरे वो नहीं हो तो मार क्या करेगी, तो वो राजा क्या कहेगा, अरे कौन करेगा उनका कहना, आचरण है ही नहीं, धर्म है ही नहीं उनमें, तो उन कौन आचरण करेगा। तो उस आचरण लिए पांच शब्द बताए, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत तत एव, और वाणी के लिए यत प्रमाणम कुरुते तद अनुवर्तते, उस अनुसार बर्ताव करते हैं। तो वाणी का असर दो गुना होता है, वहां आचरण का असर पांच गुना होता है, और आचरण वाला कहता है उसका आचरण होता है वाणी में भी, और आचरण में भी सच शक्ति होती है। तब राजा हो जाएगा और धर्म से रहित होगा तब होगा। बात क्या है मूल में, आप क्षमा करेंगे राज भी क्षमा ही करें, नहीं करो तो कैद कर दो, कोई बात नहीं, मर्जी आओ जो कर दो, बात पूछे मैं तो सच्ची कहूंगा, कैद कर दो साहब राजा, हमारे पास कुछ कोई सामान है नहीं ऐसा जो तुम्हारे लड़ लें। भीतर वास्तव में आचरण अच्छा होने से ही उसका असर पड़ेगा। जब राजा धर्म रहित तो होगा, वो धर्म का उपदेश देगा, कर्तव्य का उपदेश देगा, प्रजा का ये कर्तव्य है, प्रजा को ऐसा करना चाहिए, तो वेश्या का उपदेश होगा, वेश्या उपदेश देगी पतिव्रत धर्म का। आप विचारो वेश्या का पतिव्रत धर्म, लोग हंसेंगे कि खुद क्या करती है और लोगों को कहती पतिव्रता बन हो गई, ऐसे स्वयं तो महान दुष्ट आत्मा है और लोगों को कहते हैं तुम धर्मात्मा बनो, तुम अच्छे आदमी बनो, मर्यादा पर चलो, हमारी आज्ञा मानो। आज्ञा आप शास्त्रों की मानते हैं क्या? जो शास्त्रों की, ईश्वर की, ऋषि मुनियों की आज्ञा मानते हैं उसी को इस संसार में आज्ञा देने का अधिकार है। जो स्वयं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ऋषि मुनियों को नहीं मानता, संत महात्मा त्यागी दिवंगत उनको बात नहीं मानता, उनको आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार दे, क्या किसका हौसले देते हो तुम? आज आप बलवान हो और निर्बलों पर आप अत्याचार करते हो और भगवान से सहायता चाहते हो, बिल्कुल बेईमानी है। आप अपने छोटों पर दया रखो, उनका पालन करो, तो आपसे बड़े ईश्वर है, वो आपकी दया, आपके ऊपर दया करेंगे। आप तो छोटों पर दया करते नहीं, कसाई बना करते हो, यार ईश्वर की दया चाहते हो, कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आपने खुद ने अपना धर्म छोड़ा है तो दूसरों की सहायता आप नहीं ले सकते। तो बड़ों को तो चाहिए रक्षा करें, रक्षा करें तो बाहर की चीजों की रक्षा, धन संपत्ति आदि की रक्षा, जीवों की रक्षा, शरीरों की, जमीन की, मकानों की, इनकी रक्षा करें, और भीतर की रक्षा तो धर्म करेगा। धर्म आत्मा झूठ कपट नहीं कर सकता। तो रावण ऊपर से बहुत संपत्ति थी और बहुत पीढ़ियां बीतती तब तक राज किया, रघुवंश का वंश बीत गया कई पीढ़ियां, तब तक रावण राज करता रहा पुराने जमाने से, परंतु पाप था तो उसका राज चला नहीं, खत्म हो गया अंत में। आज रावण का नाम लेना कोई चाहते नहीं, और युधिष्ठिर महाराज है और हाँ राम जी है, तो राम जी लगा आज राम नाम लेते हैं, राम राज्य परिषद बनती है, राम राज्य होता कहना कह, यहाँ तो राम राज्य है, ये लोग कहते हैं, कोई कहता है रावण राज्य है, बढ़िया। ये दशा होगी धर्म का छोड़ने से। तो राम जी है वो धर्मात्मा है, ये दोनों है तो एक ही है, राज रावण राम एक राशि है, एक ही वर्ग है, सभी एक होते हुए भी फर्क कितना है। काव्य साहित्य बनते हैं उसमें हमें पढ़ाई के चीज में आया कि ये जो कथा बताई जाती है इनका तात्पर्य क्या है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। रावण दोनों का चरित्र आता है, राम का रावण का भी आता है, तो राम जी के आचरण की तरह आचरण करो, रावण की तरह मत करो। नहीं करने का आचरण क्या होता है नतीजा, और अच्छे आचरण का क्या नतीजा होता है, ये शास्त्रों का है सिद्धांत, दोनों आपके सामने रख दिया। अब धर्म रहित करोगे तो रावण का राज्य होगा, अरे हो ही रहा है। विदेशी से ऐसी बात आई है, मैंने सुनी है, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, अखबार कोई आ गया देख लिया, मैं पढ़ता नहीं हूँ, इस वास्ते मेरे को विशेष जानकारी नहीं है। कितना बनाया है भैंस का मांस, 1000 टन भैंस का मांस मांगा है सरकार से, यहाँ से बड़ी भारी आचरण की बात है। हिंदुस्तान जो धर्म प्राण देश है, भीतर से धर्म प्रधान, बाहर से कृषि प्रधान देश, तो कृषि प्रधान में तो गायों और बैलों को तो मारते हैं, बैलों को तो मारना छुट्टी है ही, गायों की भी सबसे छुट्टी है। अब खेती किससे करेंगे? अरे धर्म प्राण है, उस धर्म प्राण देश ने, मैंने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप जानकार हो, चमड़ा जितना निर्यात आज हिन्दुस्तान से हुआ है, इसे किसी देश से इतना चमड़ा नहीं आया है। जितना मांस निर्माण यहाँ से हुआ है, इतना दूसरी जगह से नहीं आया है। और मैंने वो पांच वर्ष की योजना है जिसका पत्र पढ़ा था, उसमें मांस का उत्पादन इतना हुआ, मांस को उत्पादन मानते हैं, 1000 टन 27 के बना 1000 टन भैंसे का मांस मांग आई, तो वो मांस पूर्ति कौन करे? हिंदुस्तान करे, जो धर्म प्राण कहलाता था वो मांस की पूर्ति करे तो धर्मात्मा रहेगा। गायों का मांस, और विदेशी है ये बात बड़ी विशेषता से कहते हैं कि ये कृषि प्रधान है, गायों के रहने से ये प्रतंत्र होगा नहीं, तो इस वास्ते बैलों को और गायों को खत्म करो, ये नष्ट हो जाए फिर हमारा राज्य हो जाएगा। और वे उधार लेते हैं रुपए, जिसमें कर्जे में ये लिखाते हैं कि तुम परिवार नियोजन करो, नहीं तो कर्जा नहीं देंगे तुम्हारे को। परिवार नियोजन करने का अर्थ कि परिवार में आगाड़ी बढ़े नहीं, हम दो और हमारे दो, दो ही हमारे संतान की संतान नहीं होना चाहिए। और एक तक की बात भी मैंने देखी है जयपुर में, एक संतान हो जाए, दो का एक हो जाए, नहीं तो दो के दो, तो ये जन्मने पर तो आपने कंट्रोल कर लिया, मृत्यु पर कंट्रोल किया है आपने? वो तो खुली है, मरेगी, जन्म पैदा तो नहीं होने दोगे और मरने बढ़ते रहेंगे, तथा क्या होगी, जी सकोगे? आपका वंश बचेगा? अरे दो ही आदमी पैदा होंगे तो खेती कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा, और साधु कौन बनेगा, और आपकी फौज में कौन जाएगा? अगर फौज काम में तो हिंदू जा नहीं सके, क्योंकि दो ही संतान हुए, तो ज्यादा संख्या फौज में जाएंगे, तो फौज में जब कहीं दंगा हो गया, कहीं मार्शल्ला हो गया, तो चलो भाई फौज को कहो ठीक करेंगे, उसमें महाराज ये हिंदुओं का नाश करने वाली फौज होगी, अस्त्र शस्त्रों सहित, आज बिना अस्त्र शस्त्र भी मार रहे हैं, घर में छिपा करके शस्त्र रख रहे हैं, शस्त्र वे काट रहे हैं, जब शस्त्र रखेंगे, शस्त्रों के चलाने का ऊपर से आदेश होगा, तो दशा क्या होगी आपकी, सोचा है आपने? ध्यान दिया कि नहीं मेरी बात पर? जब दो ही संतान हो गए, फौज में भर्ती कौन होंगे? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो फौज में भर्ती हुए होंगे जिनके संतान ज्यादा है, वे सब फौजी हो जाएंगे, तो कहीं काम पड़ेगा रक्षा का, तो फौज आएगी रक्षा करने के लिए, रक्षक होंगे मुसलमान, तो उनका तो कुरान कहता है हिंदुओं का नाश कर दो, मुझे मूर्ति पूजा करे वो नाश कर दो, जो मुसलमान नहीं उसका नाश कर दो, ये कुरान शरीफ की बात मैंने सुनी है। तो वे दंगे में क्या करेगा, खत्म कर देगा और को, पहले तो आप जन्म नहीं फौज में भेज जाएंगे, ये दशा करेंगे, अब दो ही जन्म में जाए। हमारे भाई बहनों से हम कहते हैं तो ये सुनते नहीं, कहते स्वामी जी समझते नहीं, अरे समझते नहीं, आप समझो थोड़ा सा, विचार तो करो, क्या दशा होगी? फौज में भर्ती तो वही होंगे जिनकी ज्यादा संतान होंगे, एक दो संतान तो घर पर रहेगा कि नहीं, माँ बाप की रक्षा करने वाले, घर का प्रबंध करने वाले, अगर दो ही हो तो कौन जाएगा? आप विचार करो क्या दशा होगी। फौजी जब सब मुसलमान बनेंगे, ईसाई बनेंगे, उस समय क्या दशा होगी हिंदुओं की? और वे हिंदू बना, मुसलमान बना लो, हिंदू बना लो, मुसलमान बना लो, ईसाई बना लो, ये उनकी इतनी चौथी से चल रही है। अभी मर्दुम शुमारी हुई जिसमें हिंदू कितने, ये संख्या नहीं आई है, मैंने खोज की है, मेरे को मिली नहीं है, 40 करोड़ कम हो गई है, ऐसी अंदाजन किया है कि 40-50 करोड़ हिंदू कम हो गए हैं परिवार नियोजन के कारण से। तो कर्जा देने वाले भी देते हैं, कर्जा खूब दे दिया है और ले लिया है, क्योंकि ये आज वोट का जमाना, बोर्ड के जमाने में राजा दे दे बने, और वो पांच वर्ष की योजना, 5 वर्ष के बाद दूसरा राजा बनेगा, तो राजा वो देखता है कि अपने धन ले लो, 5 वर्षों में जितना लूट ले लो, फिर अपने राज्य रहना नहीं, मरे सो मरो, तो इसमें दरिद्री बन गया है। राजाओं का जब राज्य था, गंगा संघ जी महाराज की बात मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, थोड़ी वर्ष हुए उन लोगों को, ये साधु सिंह जी थे, कंवर पद में थे, तब से मैंने देखा है, जब से मैं देखता आ रहा हूँ। तो कितनी वृद्धि कर दी थी, कितना खजाना बढ़ा दिया था, कितनी बीकानेर की उन्नति कर दी थी, जो जय जंगल थर बादशाह उनको पदवी मिली, गंगा सिंह जी को पद मिली, जय जंगल थर बादशाह, जंगल के बादशाह ये पदवी मिली, इतनी उन्नति करी अपने देश की। आज कर्जा हो गया हिंदुस्तान ऊपर, कर्जा इतना हो गया है जिसमें कर्जा चलाना मुश्किल है, क्योंकि ये 5 वर्ष की योजना है, वोट से होता है, तो वे देखते हैं राजा है, जब तक लूट लो तो फिर आगे मरे तो मरो। राजा विचार करते थे, महाराज अभी अकाल पड़ा, पानी की कमी आई, तब अजीत सिंह जी थे इनमें जोधपुर में, राजा के छोटे भाई, राज तो रहा नहीं, सुमेर सिंह जी थे, राज्य नहीं था, सुमेर सिंह राज्य नहीं रहा, उन्होंने प्रजा के पानी के लिए बड़े बड़े टंग पर भर करके प्रजा की रचना करी है, राज नहीं घर में, परंतु उनके मन में आती है हमारी ये प्रजा है, तो प्रजा के पानी के लिए अब कौन करे, करती सरकार कब, के जब वोट लेना होता तब। एक दिन वोट मांगने को गए और गांव में कूड़ा कचरा पड़ा है, तो लोगों से प्रश्न किया, अरे भाई यहाँ मैत्र नहीं है, ये साफ नहीं कर, सफाई नहीं करते, कि मैत्र 5 वर्षों से आता है, 5 वर्षों तो मैत्र आते ही नहीं। अब वोट लेना जो ऐसा हुए वोट बस बस से दिया, और वोट में मरियो क्या, गांधी जी का भी एक वोट और भेड़ चरना वाला एक वोट, ये इज्जत है वोटों की, वोटों के प्रधान मूर्खता की प्रधानता। मास्टर ज्यादा होते हैं, विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, कबड़ ज्यादा होते हैं, तत्व के जीवन मुक्त थोड़े ज्यादा होते हैं कि अज्ञानी ज्यादा होते हैं। अब वोट होगा ज्यादा का, ज्यादा का अर्थ मूर्खता की प्रधानता, तो मूर्खता की प्रधानता और उसमें धर्म नहीं, फिर लो तमाशा एक और है, पहले तो मूर्खता फिर वे धर्म नहीं मान रहा, उन पर लगाम कौन लेगा, कौन लगाम घर खेचेगा, उनके किस के बस में रहेंगे, तो क्या दशा होगी उनकी। इस वास्ते सज्जनों इसका विरोध करना चाहिए कि ये हमारे नहीं हो सकता, जो आप समर्थ हो आपको कहना चाहिए, लिखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कैसे जन्म को जनता का नाश न करें, सत्यानाश न करें, सरकार से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, आप धर्मरहित बता दोगे सबको क्या दशा होगी। अब धर्मात्मा होगा वो अलग से मखरा नहीं हो सकता, संतान दोष से अधिक होगा वो अलग से मखरा नहीं हो सकता, संतान दोष से अधिक हो जाएगा राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी, और नई नौकरी चाहो तो दो चार आदमी लाओ ऑपरेशन कराने वाले, तब रहेंगे नहीं तो तुम नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये क्या दशा हो रही है इसकी, जनता का नाश करने के सिवाय और क्या बताओ आप, दो के सिवाय कोई हो ही नहीं सका। अविश्वास तुम्हारे नौकरी की जरूरत है, तुम्हारे मिनिस्टर होने की जरूरत है, तुम इलेक्शन खड़ा हो सकते हो, तो संतान दो से ज्यादा संतान नहीं होना चाहिए, और धर्म का आपके अस्थि बताना चाहिए, लिख देना चाहिए कि हम धर्म नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते। बात क्या मूल में, ये अयोध्या की जो मंदिर हुआ, मस्जिद थी, उस मस्जिद के जाने से मुसलमानों की गुलामी के कारण आज कह रहे हैं कि धर्म रहित हो जाओ, भीतर में है लोभ राज्य का, जे मुसलमानों का 2 वोट तो मिल जाए और इनको न मिले, तो इससे गुलामी है लोभ की, लोभ है नरकों का दरवाजा, जाएंगे कहाँ, क्या दशा होगी। तो हम तो प्रार्थना करते आप जीते रहो तो अच्छी बात है, मर जाऊं तो मैं रोना पड़ेगा भी हमारा मालिक मर गया, मैं क्या तो भाई वही है ठीक, मारवाड़ी कहा होता भी है कि रांडा रोवा क्या है, तेरो रो क्या, मारा माटीडा मर गया कि मेहा ने कि मर गया थे, हो जाने मैं क्यों रो, बस रो मे थाने हमारे महाराज है ना, ये व्यवहार में बहुत कम जानते। एक आदमी पूछा कि रांडो रोवो क्यों थे, स्त्रियों रो रही थी, क्यों रो कि माटीडा मर गया, माटीडा नहीं समझे क्या बता, पति मर गए मेहा ने थे नी जैसा जने रोवा नहीं, तो मैं क्यों रोवा था ना, तो मैंने रोनो पड़ सी मारा मा पीड़ा मर जी तना। इस बात में पहले कहा कि मैंने रोनो नहीं पड़ा थे कई दिन थी, वो तो चौखी बात है, पर थारो तो मौत रो बुला रहा हो थे, थारे दशा क्या उसी सोचते नहीं है, विचार नहीं करते है। तो इसने मेरा बड़ा संघर्ष होगा और बड़ा विप्लव होगा। धर्म से ही मर्यादा रहती है, धर्म से ही आदमी ठीक रहते हैं। सरासर बात मुसलमानों की मस्जिद बनी जिस जगह खास जन्म स्थान, जन्म मैंने तो लेख लिखा है, प्रार्थना करी है, उनसे पत्र लिखा है कि महाराज आप कृपा करो, ऐसे मत करो, अनुचित दबाव डाल करके जो प्रतिबंध लगाया है किस पर, विश्व हिंदू परिषद पर और राष्ट्रीय स्वयं सेवक पर, बजरंग दल पर, तो मैंने पत्र लिखाया कि आप कृपा करो, मुसलमानों को लिखा है आप हमारे आत्मा हो, आत्मा तुम्हारी आपकी एक है, आप हमारे प्रिय हो, तो आप विचार करो आपका जो कलंक है, अयोध्या का कलंक, बनारस का कलंक और मथुरा का कलंक, जो कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, इसमें पश्चिम मंदिर बन जाए, तो आपका पीढ़ियों का कलंक दुखता है, आप कर क्या रहे हो। नहीं, हमारा कलंक रहना चाहिए। हमारे बड़े कैसे थे कि मुस्लिम मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाते थे, ऐसा में हमारे भड़के थे। तुम्हारी पीढ़ियों की तरह कलंक तुम्हारा मिट जाए, अन्नदाता कृपा करो थोड़ा सा, पर ये होश ही नहीं है, दशा क्या होगी। मैंने महाराज से कहा, महाराज ये कर क्या रहे हैं, हमारा कलंक रहे, हमारी अवशिष्ट रहे, संसार मात्र में, दुनिया मात्र में अन्यायी हुए, मुसलमान अन्यायी हुए। इनको महाराज बोले कि ये बात याद ही नहीं आती इनको, ये बात ख्याल में नहीं था इनके। महाराज ने कहा तो ख्याल में इसकी थी बात है, हिंदुओं की चीज हिंदुओं को दे दो, मुसलमान मुसलमान दे दो, अब अन्याय करके रखना चाहते हैं। अब ध्यान देना बात, हम कहते हैं हमारी राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, तो नीति में क्या होगा, न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। धर्मी तो न्याय कराता है, अब अन्याय होगा, अन्याय से क्या होगा, स्वयं का नाश होगा, दुनिया का नाश होगा। अन्याय से प्रजा चलेगी, अन्याय से संसार चलेगा, नष्ट हो जाएगा। सर्पाणांच खलानांच प्रद्रव्यापहारिणां अभिप्राय न सिद्धंती तेने दिन वर्तते जगत। कहा है कि जैसे सर्प है तो सांप, एक चोर की चोरी करने वाला, डाका डालने वाले, इनकी मनचाही होती नहीं है। अन्याय करने वालों की मनचाही नहीं होती, चोरों की मनचाही नहीं होती, डाकुओं की मनचाही नहीं होती। मनचाही हो जाए तो संसार को चौपट कर दे, किसी के पास धन रहने देंगे। एक बात हमने सुनी संसद में, बात हुई कई वर्षों पहले की बात है, संसद में बात हुई तो कि भाई ये धनी है जो निर्धन कैसे बने, कैसे कैसे बने, टैक्स लगाओ ज्यादा, उनके पास कर लगाओ, मृत्यु कर लगा दो, भविष्य कर लगा दो, और जब संपत्ति कर लगा दो जिसे सब हो जाए। तब हमारे सुना है बीकानेर दरबार थे ना, साधुल सिंह जी वही संसद में थे, कर्ण सिंह जी थे, तो कर्ण सिंह जी बोले आप विचार कुछ निर्धन कैसे बने, अरे विचार कर तो सब धनवान कैसे बने, आप बात करो राजा हो आप, सब निर्धन कैसे बने, आप राजाओं की दृष्टि होनी चाहिए। कर्ण सिंह जी बोले ऐसी बात मैंने सुनी है, सच्ची बची आप जानो भाई, तो पता नहीं मन बात ऐसी हुई है। तो दूसरों को निर्धन बनाने वाला धनवान बनेगा, दूसरों का नाश करने वाला अमर रहेगा, दूसरों का हत्या करने वाला ठीक रहेगा, ये दूसरों करेगा वो तुम्हारे पर पड़ेगा, आज आज जो करते हो औरों पर वो तुम्हारे पर होगा। आज छोटे जंतुओं को आप मारते हो तो कभी आप भी छोटे बनोगे, आप बड़े ही बना रहोगे, 84 लाख श्रोणी में जाना पड़ेगा, फिर आपकी दशा क्या होगी। इस वास्ते भाई धर्म को लेकर, अहिंसा को लेकर के चलो, जिससे आपका दुनिया का कल्याण हो जाए, तो ये बात बहुत ही अनुचित है, घनी अनुचित है, लोगों के लिए बड़े नुकसान करने वाली है, देश और विदेशों में आपकी फजीती करने वाली चीज है ये, और कलंक रहेगा। रावण का राज नहीं रहा, विभीषण का भी मानते हैं पर नहीं है, हमारे सामने नहीं है। परंतु कलंक रावण का डूब गया क्या? दुर्योधन का कलंक डूब गया क्या? कलंक तो राज्य करता था दुर्योधन, और युधिष्ठिर महाराज जंगल में थे। द्रौपदी की शंका होगी, आप धर्म का पालन करते हो, जंगल में रहते हो, और धर्म का विचार नहीं कर राज्य कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि राज्य के लिए धर्म का पालन करना वो धर्म नहीं है। राज्य मिल जाए धर्म पालन करो, धर्म पालन नहीं करो तो धर्म पालन करो तो राज्य मिल जाए, ये बात नहीं है। हम धर्म का त्याग नहीं करेंगे, राज्य मिले न मिले तो अंत में राज्य युधिष्ठिर का ही हुआ। दुर्योधन का कितना धन रह गया था? आज छाने छाने के लाख अग्रह में जला दो। शकुनी ने कहा लाख अग्रह में जला दो, ऐसे नाश कर दो। कितने कितने कौतुक रचे, द्रौपदी को हर कर ले गए, अग्नि दो कर दो और अग्नि लगाई, और भीमसेन को जहर दे दिया। पांच जो आत्ता ही होते हैं, अग्नि दो गर्दश दे मानो अग्नि दे विष दे, जो क्षेत्रदार धनहार बहुत बकार शस्त्र करी, अवैध वैध खटकार छह काम करने वाले अवैध है वो भी वैध हो जाता है, नहीं मारना चाहिए उसको मार दे। वेदांत पारगामी ब्राह्मण और अत्याचारी उसको मार दो, क्योंकि अन्याय कर रहा है। ये पांचों अन्याय किया उन्होंने, छिप छिप कर किया, छाने छाने किया, किसी को पता नहीं लगे इस तरह से किया, पर दशा क्या हुई अंत में, ये परिणाम सोचो जरा। जो मनुष्य समझदार होता है वो परिणाम सोचता है, वर्तमान नहीं सोच करके। और मूर्ख होते वर्तमान सोचते हैं, परिणाम का ख्याल ही नहीं करते, तो परिणाम इसका बड़ा भयंकर होगा। आज जो कहते हैं कि धर्म के रहित होगा उसको भी वोट दिया जाएगा। कारण क्या है कि मनुष्य कुछ थोड़े जागृति हुई है हिंदुओं में, हिंदू तो भी यूं ही मुर्दे क्यों हो रहे हैं, चेत नहीं करते। क्षत्रियों का नाश कर दिया, और क्षत्रिय लोग फौज में थे, आज फौज में भर्ती करते हैं स्त्रियों को, क्या निहाल करेगी बताओ। दशा आज हो रही है, ऊंधी बात हो रही है। बगीचा लगाओ फूल नहीं फल नहीं हुआ, जिसमें फूल नहीं वैसा बगीचा लगाओ, और फौज में पुरुष नहीं वैसे फौज बढ़ाओ। मैंने कर्तव्य विज्ञान की पुस्तक लिखी है, उसमें ये बातें लिखी है सभी। क्या दशा हो रही है और कितना पतन हो गया हमारे सामने सामने। मैं कुछ ज्यादा उम्र का नहीं हूँ, परंतु मैंने काफी देखा है। 90 वर्ष कभी की उम्र होती है मेरी, 89 वर्ष की, एक वर्ष का मैं 90 में, इतने में मैंने बहुत देख लिया है। लंबी वर्ष वाले कितने देखेगा पता नहीं है, सब मैंने देखा है। सब क्या क्या दशा हुई है, राजाओं का राज्य था, कितना धर्म था उनमें, कितनी प्रजा के पालन की रक्षा करने की उनकी बात रीत चलती थी। आज क्या चलता है, क्या हो रहा है, प्रजा किधर जाती है, क्या दशा है। वोट दे लेने के लिए तो सब जगह से घूमे गए, और वोट मिल गया फिर जयराम जी की। एक आदमी चढ़ा नारियल पर लेने के लिए, नारियल लेने के लिए चढ़ा तो हवा चली जोर से, तो नारियल का रुख तो होता है बड़ा, और पेड़ी होती पतली जो हलाई हो जोर से, घबराया घबराया तो हे हनुमान जी महाराज आपके सवा मन रिचार्ज करके चीज कर रहे हूँ, सवा मन चढ़ा दे सो नीचे उतर जाऊ, थोड़ा नीचे आ जाऊंगे भरा सवा मन नहीं तो पांच सिर तो जरूर कर दूंगा, पांच से सीढ़ी बढ़ा दूंगा। नीचे आया कि एक सिर दे दूंगा, अंत नीचे आया तो कह बड़ा एक नारियल क्यों बढ़ा दे। राजस्थान में जोधपुर के राजस्थान मोटर कह गए थे सड़क बन गई, उतनी उतनी सड़क बन गई है, इतनी तो बन गई है, रोड बनाने वाले अपने लेने वाले वे ले लेते हैं, मजूरा वही घर पर सोता है, तनख्वाह मिल जाती है। या रेत इकट्ठी कर दी सड़क, सड़क क्या बना है, रेत ही कर दी, गाड़ी चलने मुश्किल, बनाए हुए कुछ नहीं। ये दशा हो रही है। एक जगह अगर राज तालाब बना हो, वहां पर तालाब बना दिया, तालाब बना दिया, हर साथ बन गया तालाब बन गया, तो मैं उस तालाब बनने से लोगों को तकलीफ है, कभी बुरा दो बनाने में इतना लगा, बूढ़े में इतना लगा, जाओ नहीं कोई बनाने को ना। ये तो आजकल दशा हो रही है। तो अधर्म या धर्म, धर्म का देश त्याग ही नहीं है, मनुष्यों में ख्याल नहीं है, मनुष्य सब हो रहे हैं निरुद्यमी। हाँ कैसा ये कारीगर है इनको दिया जाए इतना रुपया, तो इतने रुपया उनको दिया जाए। अब जो जितने महकमे हैं उसमें मैं ताले कैसा मिले वैसी हरिजन को दिया जाए, हरिजन को सीट उठ दी जाएगा। एक सुथार ने मेरे को बताई बात कि भाई हरिजन आते हैं तनख्वाह तो बरोबर पाते हैं, अरे काम जानते ही नहीं। हमने कहा तुम काम सीख लो कि क्यों सीख लें, मेहनत करनी पड़े, तनख्वाह तो यही मिलती मुफ्त में ही, उन्नति करते हैं, महान पतन होगा इससे। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांच व्यतिक्रमा त्रीणी तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। न करने लायक काम को करने में उनमें योग बता दिया, और जो करने लायक है उनका तिरस्कार कर दिया। वहां तीन चीज होगी, अकाल पड़ेगा और महामारी आवेगी और भय पैदा होगा, लड़ाई होगी झगड़ा होगा। वे चीजें हो रही है, वही नतीजा हो रहा है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। या नतीजा देख रहा तो कि महाराज आप तो विभूत चौकी लगाई, सूखेगा जब उगड़ेगा, तिलगर सा क्या सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या पता है, अभी तो गीला है। ये बात परिणाम होता तब देखना तमाशा, यार हुआ है परिणाम, ये प्रत्यक्ष देखा है हमने, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है। पुरानी क्या रीत थी, कैसी मर्याद थी, कितनी बनहल श्रृंखल काम बनता था, आज सब उस श्रृंखल करके कर दिया है। यार फिर अब नई बात है, अभी तो नई बात आई है कि धर्म रहित होगा, धर्म में धर्म राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। फिर आने वाला है कि रामायण नहीं होना चाहिए, महाभारत नहीं होना चाहिए, ये उपनिषद नहीं होना चाहिए, वेद नहीं होना चाहिए। ये दशा होगी तो पता नहीं है। सहदयाल जी शेठ जो गीता प्रेस के उत्पादक संचालक संरक्षक थे, वो कहते थे जल्दी से रहम करो, अगर ये कोई प्रतिबंध लग जाएगा, नाम भगवान का नाम जपना, गीता पढ़ना, गीता तैयार करना प्रतिबंध हो जाएगा, नहीं कर सकोगे। ये जैसे रावण के राज्य में ऐसा नहीं कर सकते, धर्मात्मा नहीं हो सकते, धर्मात्मा नहीं हो सकते, बात आई है। अभी तक इन पर प्रतिबंध नहीं लगा है।